हरे कृष्ण। नवाभास अध्याय 4। तो नवाभास के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 4 है। नवाभास इज कॉल्ड द क्लियरिंग स्टेट बिकॉज इट क्लियर्स और प्योरिफाइज द हार्ट ऑफ ऑल सिंस। क्लियरिंग स्टेज का मतलब यह है कि जब हम लोग अपराधों से मुक्त होने लगते हैं, उस अवस्था को नवाभास कहा गया है, क्योंकि उस समय हमारे हृदय को ये सभी प्रकार के पापों से छुटकारा दिलाता है और इसको इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं, यानी कि शुद्ध नाम और नाम अपराध के बीच की स्थिति है नामाभास। शुद्ध नाम का जहाँ हमें आभास होता है उसको नामाभास कहते हैं, शुद्ध नाम नहीं है उसका आभास है। उदाहरण दिया गया है भक्तों ठाकुर के द्वारा, जिस तरह से सूर्य उदय होता है तो सूरज की किरणें हमारे कमरे में प्रवेश करती है और लेकिन सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, तो किरणों से हमें आभास होता है कि सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन वास्तव में हमने सूर्य का भी दर्शन नहीं किया, तो इसको कहते हैं नामाभास। और ऐसी स्थिति में हरिनाम का उच्चारण ध्यानपूर्वक होता है अपराध उससे बचते हुए, और साथ में हम लोग हरिनाम लेते हैं उत्साहपूर्वक, उत्साह निश्चय धैर्य। हालांकि ये शुद्ध नाम नहीं है लेकिन नामाभास जो है वो लाभकारी होता है, और ये हालांकि कृष्ण प्रेम नहीं देता है लेकिन नामाभास से हम शुद्ध नाम की अवस्था में पहुँचते हैं, नामाभास से कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता है। और जैसे कि अजामिल की कथा आप लोग जानते हैं, भागवत के 6 स्कंद में अजामिल की कथा है, जिसमें अजामिल एक ब्राह्मण था और शालिग्राम की पूजा करता था। एक दिन वो जंगल की तरफ गया फूल इत्यादि लेने के लिए, पूजा के लिए सामान लाने के लिए गया, तो रास्ते में उसने एक और पुरुष और स्त्री का मिलन देखा, उनका यौन मिलन देखकर अजामिल जो है वो भ्रमित हो गया और उसका मन दूषित हो गया, और इस तरह से वो फिर पाप कार्य में लगा और उसकी कई संतानें हुई, और जो आखिरी संतान का नाम उसने रखा नारायण, नारायण, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार थे, और क्योंकि उसने शालिग्राम की पूजा भी की थी पहले, इस कारण से इन अच्छे संस्कारों के कारण वो अपने आखिरी संतान का नाम जो है वो नारायण दे पाया। तो नारायण जिस दिन दिया वास्तव में उसी दिन उसके पाप कटने लगे, वो अपने पुत्र को पुकारता नारायण लेके आओ खाने के लिए, लेके आओ नारायण, वहां से कपड़े लेके आओ नारायण, जूते लेकर आओ। तो इस तरह से वो अपने पुत्र को पुकारा करता था, बहुत ज्यादा मोह था उसको अपने पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा। तो जब वो 88 साल की उम्र का हो गया, लगभग वृद्ध हो गया और मृत्यु के बहुत निकट था, बीमार लेटा था, तो उसने देखा, क्या देखा उसने, यमदूतों को देखा उसने, और यमदूतों को देखकर वो घबरा गया और बहुत से जोर से चिल्लाया हुआ नारायण नारायण करके चिल्लाया हुआ, वो अपने लड़के को पुकार रहा था, उसे भगवान को नहीं पुकारा, उसने क्या किया अपने पुत्र को पुकारा। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारा साधन भजन होता है, जैसा हमारा साधन होगा उसी तरह का हमें स्मरण होगा अंतकाल में, जिसका हम लोग चिंतन करते रहे हैं जीवन भर वही रूप हमारे सामने प्रकट होगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, तम तम एवं तिकौंत्या सदा तद्भाव भाविता। तो इसलिए अजामिल अपने, क्योंकि पुत्र से मोहित था, तो उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, और यमदूत तो वहाँ पहले आ चुके थे, लेकिन जब भगवान के पार्षदों ने सुना कि अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा है तो वो भी वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ संवाद हुआ यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में, और यमदूत भी हैरान हो गए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम किसी को लेने गए हों और हमें कोई रोक रहा हो, लेकिन ये दिव्य शरीर का तेज देखकर, उनका प्रभाव देखकर जो यमदूत थे वो भी घबरा गए और वहाँ से चले गए। यमराज जी के पास वो गए और यमराज जी ने उस घटना के बारे में बताया कि ऐसा हमने देखा, और उन्होंने हमें बताया, उन्होंने ये भी बताया हमें कि जिसकी आप सेवा कर रहे हो वो भी इनका नाम लेते हैं, यानी कि यमराज जी भी भगवान का नाम लेते हैं, वो उनके अनन्य सेवक हैं, वो भी महाजन हैं। तो यमराज जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, आज के बाद केवल उसी को पकड़ के लाना जिसका मस्तक कभी भगवान के सामने झुका ना हो, जिसके जीवा में कभी भगवान का पवित्र नाम नहीं आया हो, ऐसे पापी को लाना, यानी कभी भी भक्तों के पास मत जाना। तो इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं कि भक्तों का अकाउंट जो है वो कृष्ण रखते हैं, और अभक्तों का अकाउंट कौन रखते हैं? यमराज जी रखते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि यमराज जी जो हैं वो उन्होंने शिक्षा दी यमदूतों को। आज तक यमदूतों को पता नहीं था इस बारे में, लेकिन जैसे ही उनको विशुद्धूतों का संग प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ, तो फिर वो यमराज जी का वास्तविक संग का लाभ उठा सके। यमराज जी की वो सेवा पहले भी कर रहे थे, उनके आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन उनका जो वास्तविक जो लाभ था, उनके संघ का जो लाभ उठाना चाहिए था, वो उन्होंने कभी नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि यमराज जी महाजन हैं और उनके ऊपर भी कोई मालिक है। वो तो ये सोचते थे कि यमराज ही जो है सबके ईश्वर हैं, क्योंकि यमराज के पास यमराज जी की उतनी शक्ति है। तो जैसे उनको पता चला वो भी हैरान हो गए, और विश्वदूतों की कृपा से, यमराज जी की कृपा से यमदूतों का भी उद्धार हो गया, विश्वदूतों का दर्शन करने मात्र से। तो इस तरह से अजामिल को उसी शरीर में दोबारा जीवन प्राप्त हुआ, और हरिद्वार गए वो। 12 साल उन्होंने वहाँ पर साधना की, और नवाभास की स्थिति से शुद्ध नाम की स्थिति पर आए। तो जिन्होंने जिस समय उन्होंने अपने पुत्र का नाम पुकारा था, नारायण पुकारा था, तो वो नाम जो है उसको नवाभास कहते हैं। ऐसे नवाभास के बारे में श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो अलग अलग तरह के नवाभास होते हैं, तो ये जो नवाभास है इसको कहते हैं संकेत नवाभास। संकेत का मतलब वास्तव में वो अपने पुत्र को पुकार रहे थे, लेकिन नाम तो भगवान का है। जैसे कि जब यावण लोग जो होते हैं वो सुअर को देखते हैं तो वो हराम हराम कहते हैं, हराम कहते हैं, है ना। तो हराम शब्द में राम शब्द छुपा हुआ है। तो इस तरह से उनका भी उद्धार होता है। हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि इन यावनों का क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर से पूछ रहे हैं कि इन यावनों का क्या होगा। तो अनामाचार्य हरदास ठाकुर बता रहे हैं कि जब जब ये हराम हराम करते हैं तो इसमें राम शब्द छुपा हुआ है, इस नवाभास से इनका उद्धार हो जाएगा। ये नाम इतनी शक्ति है, इसलिए यहाँ पर भागवतम में नवाभास के बारे में बताया है। सांकेतम पारिहास्यम व स्थोभम हेलनम एव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विहु विधु वन चैन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज इमीजिएटली फ्रीड फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ अनलिमिटेड सिंस इवन इफ यू चैंट्स इनडायरेक्टली टू इंडिकेट समथिंग एल्स जोकिंगली फॉर म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और इवन नेग्लेक्टफुली दिस इज एक्सेप्टेड बाई ऑल द लर्नड स्कॉलर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो जैसे ही कोई नाम का उच्चारण करता है सब समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा प्राप्त करता है, भले वो किसी और को पुकार रहा हो। जैसे यहाँ पर अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को तो नहीं पुकारा था, और किसी को पुकारा, लेकिन क्योंकि वो भगवान का नाम था उससे क्या है कि इतने पाप कट जाते हैं कि उतने पाप तो हम कर भी नहीं सकते हैं। और या फिर कोई अगर मनोरंजन के लिए भी करता है, जैसे रॉक शो हो रहा है, मंत्रा रॉक शो होता है, है ना, तो कई लोग आते हैं, हमारे कई यंगस्टर्स भी आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं, है ना, ये रॉक शो हो रहा है और रॉक शो में सब नाचते हैं, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं वो, है ना। लेकिन क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया जाता है तो उनको भी लाभ मिलता है। तो इस तरह से भागवत में लिखा है, क्या लिखा है कि सभी विद्वान लोग अशेष आग हरम विदु, बड़े बड़े विद्वान जन लोग हैं जो उस बात को स्वीकार करते हैं। तो नाम अपराध और नामाभास में अंतर बता रहे हैं ठाकुर भक्तिविनोद, क्या बता रहे हैं कि शुद्ध नाम जब नहीं होता तो उसको नामाभास कहते हैं। नामाभास, नामाभास एक स्थिति में है और दूसरी स्थिति में वो नाम अपराध कहला जाता है। तो उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कभी कभी किसी स्थिति में वो नाम अपराध होता है और किसी स्थिति में वो नामाभास होता है। तो प्राकृत भक्त जो है इसी दौर से गुजरता है, और जब इसको अशुद्ध रूप से इसका जप किया जाता है अज्ञानता के कारण, यानी कि भ्रमित होने के कारण या फिर किसी असावधानी के कारण हम लोग ठीक से जप नहीं कर पाते हैं, अशुद्ध इम्प्योर नेम होता है, तो ऐसा नाम जो है वो नामाभास है। लेकिन अगर भुक्ति और मुक्ति के लिए अगर नाम का जप किया जाता है ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो नाम अपराध कहला जाए। जैसे एक नामाभास है उसको कहते हैं प्रतिबिंब नामाभास, जो कि वास्तव में नामाभास नहीं है, वो नाम अपराध है। भक्तों ठाकुर कह रहे हैं हरिनाम चिंतामणि में कि प्रतिबिंब नामाभास क्या है, नाम अपराध है। प्रतिबिंब नामाभास का अर्थ है, उदाहरण है, जैसे कि सूरज है उसकी किरणें पड़ रही हैं जल में, जलाशय में, तो जलाशय में जो किरणें पड़ रही हैं वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पड़ रही हैं। आपने देखा होगा कि सन का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है पानी में तो उसमें बड़ा ही वो बढ़ जाता है एकदम से, है ना, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है पानी में, अलग अलग दिखाई पड़ता है। या चांद भी दिखाई देगा, कल चांद को देखो जल में, है ना, पानी में देखते हैं तो वो उसको प्रतिबिंब कहते हैं, डिस्टॉर्टेड होता है वो, असली रिफ्लेक्शन नहीं होता वो। तो इस तरह से भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि कोई अगर मायावादियों के पास जाके हरि नाम सुनता है, नाम संकीर्तन में भाग लेता है, तो वो नामाभास नहीं है, उसको नाम अपराध कहते। तो ऐसा लगता तो है कि बहुत अच्छा वहां पर यंत्रों से और संगीतमय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा वहां पर क्या हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, बहुत सुंदर सजावट की गई है, भागवत कथा भी हो रही है, है ना। लेकिन क्योंकि उस नामाभास के पीछे उनका जो कंसेप्शन है, विचार है, वो क्या है, मायावाद कंसेप्शन है। तो इसको कहते हैं मुक्ति नाम या नाम अपराध, नाम अपराध। तो ऐसे हरिनाम संकीर्तन में जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा अपराध लगेगा हम लोगों को। तो ये बात समझने की है। और अगर तो 10 नाम अपराध अगर होते हैं और 10 नाम अपराध होते हैं, इसके अलावा अगर 10 नाम अपराध होते हैं और इसके अलावा भुक्ति और मुक्ति नाम के अलावा, तो वो सब नाम अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यानी कि अर्थ ये है कि नाम अपराध अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम नामाभास की स्थिति में हैं, और ऐसे नामाभास के निरंतर उच्चारण करने से हम शुद्ध नाम की स्थिति पर पहुंचते हैं। अजामिल के साथ क्या हुआ कि अजामिल को नाम का आभास हुआ, संकेत नाम आभास हुआ, उसके बाद वो नाम अपराध नहीं किया उन्होंने। अजामिल ने उसके बाद क्या हुआ, नाम अपराध नहीं किया, इस कारण से वो सीधा वो शुद्ध नाम में पहुंचे। हमारे साथ क्या होता है, हम लोग जब आते हैं मंदिर में विग्रह के सामने संकीर्तन में नाचते हैं, आनंद आता है और ऐसा लगता है कि आज ही धाम चले जाएंगे, है ना। जब पहली पहली बार आए होंगे, आप सबको भी अनुभव हुआ होगा कि आप खूब नाचे होंगे, खूब आप उत्साहित होकर नाचे होंगे, खूब रोमांचित हुए होंगे, है ना। जैसे कई बार भक्त लोग वृंदावन जाते हैं तो धाम में जाकर बहुत आनंद आता है उनको, तो ऐसा लगता है कि अभी हम धाम चले गए, परफेक्शन मिल गया हमें। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद रूखा सूखा सा लगने लगता है। बोलते हैं अब हम वृंदावन आते हैं वो आनंद नहीं आ रहा जो पहले आता था, अब हम संकीर्तन में बैठते भी हैं तो वो आनंद नहीं आ रहा जो वो जो पहले आनंद आ रहा था जब हम पहली बार आए थे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है। लेकिन अजामिल के केस में क्या हुआ है कि जब उन्होंने नारायण करके पुकारा, अपने पुत्र को भी पुकारा, वो नामाभास कहते हैं जिसको संकेत नामाभास। उसके बाद फिर कभी उन्होंने नाम अपराध नहीं किया। नाम अपराध के बारे में हमने चर्चा किया था पहले, तो नाम अपराध नहीं हुआ उस। लेकिन हम लोग के केस पे क्या होता है कि नाम अभास के बाद हम लोगों ने नाम अपराध किए, इसलिए वापस हम लोग फिर से नाम अपराध की स्थिति में आ गए। और अब नाम अपराध की स्थिति से नाम अभास की स्थिति में जाने में हमें समय लग रहा है। तो यहाँ चार प्रकार के नाम अभास बताए गए हैं। तो सांकेत नाम अभास बताया गया है, यानी कि किसी और को पुकार रहे हैं, भगवान का नाम होता है लेकिन पुकार किसी और को रहे हैं। तो यहाँ पे अजामिल की कथा हमने बताई थी, और फिर हमने यामनों के बारे में बताया था कैसे वो सब सूअर को पुकारते हैं, हा राम करते हैं या हराम करते हैं बोलते हैं, तो उसमें राम नाम शब्द छुपा है, तो इस तरह से वो भी पापों से छुटकारा पाते हैं। परिहास, परिहास का मतलब मजाक से, मजाक उड़ाते हुए। और इस प्रकार कोई अगर मजाक करता है, मजाक उड़ाते हुए नामों का उच्चारण करता है, तो उसको भी नामाभास कहते हैं। तीसरा स्थोभ नामाभास है। अगर कोई किसी को मॉक करता है, और कोई अगर जप कर रहा है, मान लीजिए आप जप कर रहे हो और आपका मजाक उड़ा रहा हो, या आप सड़क पर संकीर्तन करते हैं तो कई लोग हंसते हैं हमें देखकर, है ना, और मजाक उड़ाते हैं, और वो भी साथ में हरे कृष्णा करते हैं, है ना, तो वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं वास्तव में, और एक तरह से इस स्थोभ नामाभास कहते हैं, मॉक करते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो मॉक करने का जेस्चर जो होता है उसको स्थोभ नामाभास कहते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिसमें नाम का उच्चारण जब होता है तो उसको नामाभास कहते हैं। हेला नामाभास से बताया गया है कि जब अनादर की भावना से हरि नाम लिया जाता है तो उससे भी उसका उद्धार हो जाता है। तो यहाँ बताया कि यह प्रभास खंड स्कंद पुराण में बताया गया है, कृष्ण नाम इज स्वीटर देन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट ऑस्पिशियस ऑफ ऑल ऑस्पिशियस थिंग। कृष्ण नाम इज अ टेस्टी फ्रूट ऑफ द फ्लरिशिंग श्रुति डिजायर क्रीपर एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ बेस्ट ऑफ द भृगु डायनेस्टी। एनी वन हु इवन वंस चैंट्स ईदर विद रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट इज इमीडिएटली डिलीवर्ड फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। यानी कि आदर की भावना से करें या अनादर की भावना से करें, हरि नाम को ले रहा है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो इसमें यही है कि जो नाम अपराध बताए गए हैं पद्म पुराण में, उसको हमें ध्यान रखना है कि वो अपराध नहीं होने चाहिए नाम अपराध, तब वो नाम अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा, अन्यथा उसको नामाभास की कैटेगरी में डाला जाता है। तो चार प्रकार के ये स्टेजेस अलग अलग नामाभास बताए गए यहाँ पर। तो नामाभास जो है यहाँ पर बता रहे हैं कोई इट इज नाम अपराध टू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम एंड देन एंगेज इन सिनफुल एक्टिविटीज थिंकिंग सिंस द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली नेम डिस्ट्रॉय ऑल माय सिंस सर्टेनली इट विल ऑल डिस्ट्रॉय द सिंस दैट आई एम कमिटिंग ऑन। लेकिन अगर कोई नाम के बल पर पाप करता है, जैसे हमने बताया कि नामाभास सभी पापों से हमें छुटकारा दिलाता है, हम उतने पाप कर भी नहीं सकते जितने पाप हमारे कट जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम पाप कर सकते हैं और फिर से दोबारा नाम लेंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना, तो वो फिर क्या हो जाएगा, नाम अपराध लग जाएगा। और जितना अधिक हम अपराध करेंगे, नाम अपराध करेंगे, तो आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं आएंगी फिर, और नए नए अनर्थ पैदा होते हैं। इसको कहते हैं अपराध उत अनर्थ, अपराध के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ, अपराध के द्वारा जो जागे हुए अनर्थ। तो अपराध के द्वारा जो आप अनर्थ पैदा होते हैं वो बहुत घातक होते हैं, बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, और इससे जो ऐसे अनर्थ भी जागृत हो जाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि पहला नाम अपराध है साधु निंदा, है ना, बहुत खतरनाक है वैष्णव निंदा करना। ये नाम अपराध ही नहीं है, साथ में वैष्णव अपराध भी है। और जैसे तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, गुरु अब कुछ आगे दे रहे हैं आप वो उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, साथ में हरि नाम भी ले रहे हैं, तो हरि नाम आपको फल नहीं देगा, निर्धारित फल नहीं देगा। मंत्र जो है यह नाम जो गुरु के द्वारा जब जिया जाता है तो वो मंत्र नाम गुरु का प्रतिनिधि होता है, और जब साधक जो है भक्त उस नामों का उच्चारण करता है, अगर उसका ध्यानपूर्वक जप नहीं करता है और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि नाम जो है वो फिर निर्धारित फल नहीं देगा, नाम निर्धारित फल देगा नहीं। तो जो फल हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं नाम के द्वारा, वो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम लोग नाम अपराधों से बचें। नाम अपराध क्या है, अभी आप देख रहे हैं, जैसे इसका कमरे में अंधेरा हो गया है कि नहीं, ये है नाम अपराध। नाम अपराध की स्थिति यही है, लगता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन वास्तव में पूरा अंधेरा है। और अभी जब अंधेरा था उसमें आपने देखा कि सौरभ के ऊपर जो है थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, बाहर से कहीं रोशनी आ रही थी, है ना। तो इस अंधेरेपन में एक भक्त को जो है रोशनी नजर आ रही है तो वो नामाभास है, और एक भक्त जब वो देखता है कि वास्तव में वो रोशनी कहाँ से आ रही है, उसको वो दिखाई पड़ता है जहाँ से वो रोशनी निकल रही है, तो वो शुद्ध नाम है। तो ऐसे शुद्ध नाम से फिर वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। तो ये तो आपको अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं देखकर। तो अंधकार की स्थिति में होते हैं भक्त लोग। तो साधना अगर ठीक नहीं होगी तो साध्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। जैसी साधना होगी वैसे ही साध्य प्राप्त मिलेगा आपको, है ना। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है अब लाभदायक है, लेकिन ये आपको समस्या में भी डाल सकता है अगर ठीक उसका उच्चारण नहीं किया जाए ठीक भावना से। लेकिन नाम अपराध अगर कर रहे हैं, किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी अगर हम इतने अपराध हो रहे हैं तो इसका मतलब अगर हम जप नहीं करेंगे तो फिर हम अपराध से बच जाएंगे। तो जप करने से तो हम अपराध कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि अगर हम वास्तव में अपराध कर रहे हैं तो अपने आप जप हमारा रुक जाएगा। अगर हमारा जप नहीं रुक रहा है इसका मतलब इतने अपराध अभी तक हुए नहीं है। और दूसरा ये है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग 1,00,000 नाम लेते हैं, 2,00,000 नाम लेते हैं, गुरु की अवज्ञा करके जाते हैं और लाखों की संख्या में नाम जप करते हैं, तो वो नाम अपराध हो रहा है, क्योंकि गुरु की अवज्ञा जो है तीसरा नाम अपराध जो है उनके ऊपर लागू हो जाता है। तो इसलिए वो संख्या कितनी भी आप जप करते रहो वो केवल के अक्षरों का उच्चारण है, अक्षरों का उच्चारण है। और ऐसी स्थिति में कई बार उनको अगर आनंद भी आता है कि बोले देखिए अब तो हमें आनंद आ रहा है, वहाँ तो कुछ भी नहीं था इस तरह से, हमें 1,00,000 नाम 2,00,000 नाम लेते हैं, तो वो आनंद भी किस तरह का आनंद है, वो भी प्रतिबिंब है। ऐसे प्रतिबिंब नाम भाषा ने बताया, तो ऐसा लगेगा आपको कि वृंदावन में जाएंगे, जैसे कई बार अवज्ञा करके लोग चले जाते हैं वृंदावन में, बोलते हमें तो आनंद आ रहा, देखो हमें तो कोई अपराध नहीं लगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब प्रतिबिंब नाम आभास जब अपने स्थूल रूप में प्रकट होता है, अपराध के रूप में प्रकट होता है, तो वहां जाकर भी फिर वो क्या होता है, बिल्कुल सूखे पड़ जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, तो फिर नाम का कोई लाभ मिलता नहीं। तो 7 लाभ हैं नाम आभास कैसा भी हो, भले वो कृष्ण प्रेम ना देता हो, लेकिन इसके बहुत सारे लाभ भी बताए गए हैं। और नामाभास जो है शुद्ध नाम की तरफ ले जाता है, और इससे हरिनाम चिंतामणी में इसमें 7 प्रकार के लाभ बताए गए हैं नामाभास। पहला बताया गया है कि हमें समस्त प्रकार के अपराधों से छुटकारा दिलाता है नामाभास। और दूसरा बताया गया है भौतिक चेतना से और कलयुग के दूषित प्रभाव से हमें बचाता है नामाभास। जैसे कल हम लोग गए थे, है ना, वहाँ जो इलाका था वो पूरा हेलिश था, एकदम नरक में था, ऐसा लगा कि हम लोग नरक में पहुँच गए वहाँ, है ना, बहुत बुरी हालत, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, हजारों की तादाद में वहाँ लोग रह रहे हैं, कई मीट की दुकानें हैं और घरों से भी जो है बदबू आ रही है, लोग मीट खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, बहुत ही हेलिश एरिया था। लेकिन जब नाम संकीर्तन हरिनाम चल रहा था और भक्त लोग नाच रहे थे और कूद रहे थे, तो भक्तों को ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो नरक में है, है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद बौरी स्ट्रीट में थे, या 26 एवेन्यू में थे, ये सारे हिपीज आते थे, ड्रग्स पीते थे और स्मोक करते थे, है ना, बिल्कुल हेलिश सिचुएशन था वहाँ। लेकिन प्रभुपाद जैसे ही चैंटिंग शुरू करते थे वो एनवायरनमेंट पूरा ट्रांसेंडेंटल हो जाता था, नहीं? और प्रभुपाद के प्योर चैंटिंग से, प्रभुपाद के शुद्ध नाम उच्चारण से वो सब के सब जो है जल्दी पवित्र होने लगे। क्योंकि किसी शुद्ध भक्त से अगर हरि नाम सुनने का मौका मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। प्रभुपाद क्या कहते हैं हरे कृष्णा कीर्तन धुन में, द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र मस्ट बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी, बोलते नहीं प्रभुपाद। तो इसलिए जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों से नाम सुनेंगे तो नाम के प्रति आकर्षण जागृत होगा और इस तरह के नाम संकीर्तन का बहुत लाभ मिलता है। जैसे भक्तों ठाकुर कहते हैं, भक्तों ठाकुर क्या कहते हैं कि कोई भी नाम संकीर्तन हो उसमें एक भक्त तो होना चाहिए जो शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहा हो, एक भक्त जरूर होना चाहिए शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहा हो। लेकिन हम पूछ सकते हैं प्रश्न कि हमें कैसे पता चलेगा कौन शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहा है कि नहीं। तो ये गुरु या आचार्य जब हमें कहते हैं, उनका आदेश होता है कि आप लोग हरिनाम में जाइए, तो भले ही वो वपुर रूप में हमारे साथ नहीं है लेकिन क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आज्ञा के साथ जो है वो शुद्ध नाम जाता है ऐसे संकीर्तन में। और ऐसे हरिनाम संकीर्तन में जब भक्त लोग जाते हैं और भाग लेते हैं तो उनको भरपूर लाभ मिलता है और इतने अनर्थ दूर हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए वृंदावनदास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखा है कि जो हरि नाम संकीर्तन है उसका 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है हमारे पर्सनल चैंटिंग से, 100 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंग्रीगेशन चैंटिंग से। तो इस प्रकार हम लोग लाभ उठा सकते हैं। और तीसरा ये बताया है हर प्रकार का जो भय है चिंताएं हैं उस समय छुटकारा मिलता है और आंतरिक शांति मिलती है। और चौथा बताया है भूत पिशाच और इस प्रकार के जो कई बार भक्त लोग घबरा जाते हैं कि भूत आ रहे हैं रात को पिशाच आ रहे हैं, ऐसे कई बार कई जगह पर जब मंदिर लिए गए चर्च लिए गए कैसल्स लिए गए विदेशों में तो वहाँ भूत थे वेस्ट में। तो वहाँ जब प्रभुपाद गए और हरिनाम किया, प्रभुपाद ने संकीर्तन करवाया तो सब भूत भाग गए। हमारे एक भक्त रहते थे उधर, उसको याद नहीं आ रहा जगह का, शायद जिया सराय में या आगे रहता था मुनीरका में, तो अभी चले गए बम्बई। वो बता रहे थे कि जहाँ जिस घर में वो रह रहे थे तो वहाँ पहले भूत रहता था, तो उसके लिए रोज ना शाम को ये लोग क्या करते थे, संकीर्तन करते थे सब भक्त लोग मिलकर। और कुछ समय के बाद फिर वो भूत चला गया, मतलब उसकी आवाज़ आती थी जब ये गए थे, लेकिन रोज इन्होंने हरिनाम करना शुरू कर दिया फिर दोबारा वो आया नहीं, भाग गया वहाँ से। तो ये वास्तव में सच्चाई है, भगवान के नामों में बहुत शक्ति है और हमें अगर श्रद्धा होगी तो उसका पूरा लाभ हमें मिलेगा। और पांचवा बताया गया है पुरुषार्थ, नामाभास से जो पुरुषार्थ हैं वो पूरे हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर ऐसी कोई इच्छा भी रह गई हो तो वो सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। छठा जो है इसमें बहुत ही ऐसा आनंद मिलता है कि हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते, नामाभास है। इसलिए भक्त लोग जब संकीर्तन करते हैं भूल भी जाते हैं कि वो बीमार हैं, है ना, या उनको कोई शारीरिक पीड़ा है, जब संकीर्तन में होते हैं तो देहात्म चेतना से ऊपर उड़ जाते हैं। हमारे आचार्य ने बताया कि नाम संकीर्तन से क्या होता है, भाव भक्ति का एक लक्षण प्रकट होता है, भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए गए हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु में नेक्टर डिवोशन प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं, एक लक्षण है भाव भक्ति का विरक्ति डिटैचमेंट। तो नाम संकीर्तन से ये लक्षण प्रकट होता है भाव का आभास, भाव भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच जाते हम लेकिन उस भाव भक्ति का आभास होता है, यानी कि जब आप नाम संकीर्तन में जाते हैं हरिनाम में जाते हैं तो विरक्ति आ जाती है। विरक्ति का मतलब है आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ नाच रहे हैं, कौन आपको देख रहा है, कौन दे आपको देख के हंस रहा है, और आपके अंदर अपनी समस्या क्या है, आपके शरीर में पीड़ा है या नहीं है, सब भूल जाते हैं, आप देहात्मक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, टोटल डिटैचमेंट डेवलप होता है और भारी सुदबुद्ध नहीं रहते उस समय। तो आसपास क्या हो रहा है ये भी नहीं पता चलता। जैसे शिवासांगन में वो तो वास्तव में भाव की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में संकीर्तन करते थे, महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ पूरी रात कीर्तन चलता था। तो आसपास के जो लोग होते थे, जो पड़ोसी होते थे, वो मजाक उड़ाते थे, वो बोलते थे शायद इन लोगों को भूख लगी है, खाने को कुछ मिलता नहीं है, इसे पूरी रात चिल्लाते रहते। खोलावे श्रीधर के बारे में यही बोलते थे कि ये श्रीधर खोलावे क्या करता है, श्रीधर वो पूरी रात कीर्तन करता है क्योंकि बेचारा बहुत गरीब है और उसको उसके पास खाने पहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए रात को पूरा चिल्लाता रहता है जोर जोर से। तो इस तरह से पड़ोसी लोग मजाक उड़ाते थे और कुछ लोग तो निंदा भी करते थे, पता नहीं अंदर ये लोग क्या करते हैं, है ना, शायद नशा करके ये लोग नाचते होंगे, ऐसे गाते होंगे, चिल्लाते होंगे। जैसे कि इवन हमारे बारे में कई बार बोल देते हैं लोग, जब सड़क पे कीर्तन करते हैं तो उनको लगता नहीं कैसे कि ये सच हो सकता है, ये लोग कैसे नाच रहे हैं कूद रहे हैं, शायद इन लोगों ने ड्रग्स लिया है, ये ड्रग्स लेके ऐसे डांस कर रहे हैं, नेचुरल नहीं लग रहा है, नहीं। तो इस प्रकार आनंद की अनुभूति होती है, भारी सुदबुद भूल जाते हैं। और हमारे वेस्ट में भी, लंदन में जब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में हमारे भक्त लोग जाते थे हरिनाम करने के लिए, श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास, मुकुंद महाराज वगैरह, तो ये लोग हरिनाम के लिए जाते थे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। तो जॉर्ज हैरिसन वहाँ से रोज़ गुजरते थे, वो अपने स्टूडियो की तरफ जा रहे होते थे, एप्पल स्टूडियो। लेकिन ये लोग इतने हरिनाम में इतने ज़्यादा मग्न होते थे, उनको पता ही नहीं था कि आसपास कौन देख रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, हम तो कीर्तन कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, है कि नहीं। इंडिया में हरिनाम में भाग लेना बहुत आसान है, लोग श्रद्धा से आपको स्वागत करते हैं, लोग माला बनाते हैं, कोई जूस का अरेंजमेंट करता है, कोई फ्रूट्स का अरेंजमेंट करता है। जैसे कटवारे सराय में वहाँ इतने सारे भक्त लोग थे, कई लड़के वहाँ थे, उन सब ने बहुत सारा अरेंजमेंट किया, किसी को जूस पिलाया, किसी को फ्रूट्स खिलाया, तो अच्छा है, वहाँ पे सबका वेलकम कर रहे हैं डिवोटीज का। लेकिन वेस्ट में ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हम उनको पता ही नहीं कि क्या है, तो वो लोग तो सोचते हैं कि कुछ नट्स हैं ये, क्रेजी हैं, पागल हैं, ऐसे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑपोजिशन हमें झेलने पड़ते हैं। वेस्ट में इतना आसान नहीं है, वहाँ पे आप हरिनाम नहीं निकाल सकते, जैसे चाइना में ओपनली आप हरिनाम नहीं निकाल सकते, ओपनली आप वहाँ रथ यात्रा नहीं कर सकते, है ना, तो वहाँ पर इलीगल माना जाएगा। वहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि चाइना इज एथिस्ट कंट्री, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो इस प्रकार कहने का अर्थ है कि ऐसे कंट्रीज में, ऐसे देशों में, ऐसे स्थानों में जाकर हरिनाम जब करते हैं भक्त लोग, आनंद की अनुभूति करते हैं, तो भूल जाते हैं वास्तव में कि एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है। यह है वास्तविक विरक्ति। सातवां, इटर्नल रेसिडेंस इन वैकुंठ इज ऑफर्ड द ऑफेंसलेस चैंटर। नामाभास से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, नामाभास आपको वैकुंठ ले जाता है, है ना। तो नामाभास जल्दी कोई अगर शुद्ध नाम में आएगा तो वो वैकुंठ जाएगा। तो क्या करना चाहिए शुद्ध नाम में आने के लिए, नामाभास से शुद्ध नाम के लिए आने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का हमें सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, जो शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हैं, है ना। जैसे आप अगर आप इस फोन में आप नंबर मिलाएंगे तो आप प्रभुपाद की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे हेलो ट्यून है, एयरटेल के कई हेलो ट्यून्स हैं, तो उसमें प्रभुपाद का चैंटिंग डालिए आप, तो अगर आप कोई भी नंबर मिलाएगा जिसमें मिला के देखिए, आप मिलाइए इसमें, ये नंबर मिलाइए, तो इससे क्या होता है कि कम से कम प्रभुपाद की आवाज़ सुनाई देगी, और सुनते ही जो एकदम से वाइब्रेशन शुरू हो जाता है प्रभुपाद की आवाज़ सुनते प्रभुपाद की चैंटिंग ना पावरफुल है, है ना। अपना आप स्पीकर ऑन करें, इसमें है स्पीकर, तो ये आवाज़ सबको पवित्र करने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब के समय में भी प्रभुपाद जी का कैसे चलाते हैं, जपा कैसे चलाते हैं, है ना। आप लोग करते हैं, घर में भी करना चाहिए आपको, तो आपको वो मिलता है ना जपा का बॉक्स, जपा बॉक्स मिलता है, चिप होता है उसमें, हाँ छोटा भी आता है तो ये तो थोड़ा स्पीकर ना क्लियर नहीं है, लेकिन वो जब खुद सुनेगा तो उसको पता लगेगा, एकदम से झटका लगता है। अगर आप खान प्रभुपाद के बाद एकदम से आती है तो पूरा एकदम आप पूरा वाइब्रेट हो जाते हैं, आप इतना पावरफुल एंड चैंटिंग है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इससे कई भक्त लोग क्या प्रभुपाद के पास भी बैठ के जप करते हैं, आपने देखा होगा मंदिर में कई लोग तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करते हैं, तो तुलसी महारानी का वाइब्रेशन आता है चैंटिंग में। तुलसी महारानी के सामने जप करने से उसका पुराण में लिखा है कि आप पोटेंसी जो है डबल हो जाती है आपकी, बहुत लाभ मिलता है चैंटिंग तुलसी महारानी के सामने बैठ कर करने से। इसलिए हमारे आचार्य ने हमें सुझाव दिया है कि तुलसी के सामने बैठ कर जप करना चाहिए। प्रभुपाल ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी तुलसी के सामने बैठ के ही जप करते थे 300,000 नाम। तो उससे क्या है कि हमें स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जो है ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस निकल कर आते हैं उनकी कृपा से, और उससे हमारा स्पिरिचुअल पोटेंसी और ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें शुद्ध भक्तों से शुद्ध नाम सुनने का पूरा लाभ उठाना चाहिए। कभी भी कोई ऐसे भक्त आते हैं और उनके नामों से हमें लगता है हम पवित्र हो रहे हैं, तो ऐसे भक्तों के संकीर्तन में जरूर भाग लेना चाहिए, हमें समय निकाल के आना चाहिए। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं इसको। तो शुद्ध नाम का श्रवण करके हम लोग नाम अपराधों से बचने का प्रयास करें, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, जब नाम अपराधों से बचेंगे नाम आभास की स्थिति में पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद नाम आभास जो हमें शुद्ध नाम की ओर ले जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी स्थिति हो, नाम उच्चारण करना चाहे पहली बार, वो भी शुद्ध भक्तों की कृपा से होता है ना। कोई नाम आभास की स्थिति में पहुँचता है वो भी शुद्ध भक्तों की कृपा से होता है, कुछ शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचता है वो भी शुद्ध भक्तों की कृपा से होता है। तो हर स्थिति में भक्तों की कृपा चाहिए, भले आप पहले दिन आंदोलन से जुड़े हो या भगवत धाम जा रहे हो, हर स्थिति में शुद्ध भक्तों की आवश्यकता है, शुद्ध भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रारंभ में क्या होता है कि नाम अपराध जो है इस स्थिति में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, अनर्थ होते हैं, अपराध होता है, अविद्या होती है, और हमें प्रयास करना चाहिए इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, और धीरे धीरे फिर हमें नामाभास की स्थिति में पहुँचना चाहिए। और इस तरह से कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो फिर वो नामाभास की स्थिति में पहुंच जाता है, और धीरे धीरे जो है फिर कोई अविद्या से और अनर्थ से छुटकारा पाता है। और जब अविद्या और अनर्थ से हम छुटकारा पाते हैं, अविद्या क्या है, देहात्मक बुद्धि, मैं ये शरीर हूँ, ये है अविद्या। तो ये जब अविद्या दूर हो जाती है, अज्ञानता दूर हो जाती है और अनर्थ दूर हो जाते हैं हमारे, तो नाम में फिर रुचि जागृत हो जाएगी, नाम में रुचि आ जाएगी। ना धर्म ना जन्म ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की तुए। तो यह है नाम में रुचि। तो फिर हम लोग मध्यम धरातल पर पहुंच जाएंगे भक्ति के। तो जब तक ये हम लोग इस अवस्था में नहीं पहुंचते, हमें समझना चाहिए कि हम लोग प्राकृत अवस्था में भक्ति के न्योफाइट स्टेज में है। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार इन नाम अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो नामाभास की स्थिति में मूलतः जो है अविद्या और अनर्थ, ये हमारे जो है दूर होने चाहिए, और साधु संघ के द्वारा हमें शुद्ध नाम के स्थिति पर पहुंचना चाहिए। और श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बताया है कि जो तीसरा श्लोक है शिक्षाष्टकम का, तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपराधों से बचते हुए जप करना चाहिए। तीसरा जो श्लोक है, यानी कि निष्ठा के स्टेज पर जब हम पहुँच जाते हैं तो हम सभी प्रकार के अपराधों से छुटकारा पाते हैं, मतलब यानी कि नाम अपराध से छुटकारा पाते हैं, विशेष रूप से नाम अपराध से छुटकारा पाते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम निष्ठा के स्तर पर पहुँच चुके। कई बार प्रश्न पूछते हैं ना भक्त लोग कि कैसे पता चलेगा हम निष्ठा के स्तर पर, जब हम नाम अपराध से छुटकारा पाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच गए। ठीक है, कोई प्रश्न है? पापों से छुटकारा मिलता, समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता। अनावभास की स्थिति में प्रारब्ध कटते हैं, प्रारब्ध पूरी तरह से कट जाते, क्योंकि कीर्तन में हम लोग भाग लेते हैं अलग अलग धुनों के कारण। प्रश्न ये है कि कई भक्त हैं हरिनाम में तो भाग लेते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न रहेगा, लेकिन जप में इतनी संख्या नहीं होती है ना। हम देखते हैं कि प्रसादम में भी बहुत होते हैं भक्त, भागवतम क्लास में भी कई बार भक्त मिलते हैं, हालांकि कई भक्त सो भी रहते हैं उस समय, लेकिन जब ऐसा समय होता है उसमें भक्त बहुत कम नजर आते। तो कलयुग में जो है सबसे बड़ी तपस्या यही है ना। क्योंकि देखिए, कोई कहेगा कि हम लोग तो प्रत्येक दिन हमारे अपने घर में मंगल आरती करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब करते हैं कि नहीं करते हैं ये परीक्षा है। क्योंकि मंगल आरती में तो आप खड़े होकर बैठ भी सकते हैं, प्रभुपाद का कैसेट चला सकते हैं, और मंगल आरती में हो, टाइम भी है। लेकिन विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि आपको इसका उच्चारण जोर से करना होगा, गुरु अष्टकम का। लेकिन जप जो है, ये जप जो है ये सबसे बड़ी तपस्या है। किसके लिए? जो नाम अपराध की स्थिति में है, नाम अपराध की स्थिति में है उनके लिए जप तपस्या होता है। संख्या पूरा करना जो है उनके लिए तपस्या है, लेकिन नामाभास की स्थिति में तपस्या नहीं होते फिर, क्योंकि नामाभास की स्थिति में आप जब रुचि के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप रसास्वादन करते हैं हरि नाम का। मतलब जितनी बार आप नाम लेंगे उतना और आनंद आएगा आपको, तो फिर आपको फिर जप करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तपस्या है और बहुत बड़ी तपस्या है नाम लेना। इस कारण से जो भक्त हैं इसमें बहुत कम होते हैं तपस्या के कारण। और तपस्या भी कैसे करनी पड़ती है? हमें बैठ कर जप करना पड़ता है ना, और जो एक ही जगह पर बैठना होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि फंस गए हम लोग कहाँ पर, है ना। ये तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ पर हम आज़ाद होकर हरि नाम ले सकें। हमें आज़ादी चाहिए, है ना, ये बंधन नहीं। हम भक्ति करने आए थे संसार से छुटकारा पाने के लिए, आपने फिर से हमें बांध दिया। हमने बांधा है किससे? आपको, हरि नाम से, है ना। तो इसलिए तपस्या के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, बिना तपस्या के कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। आप भले भौतिक संसार में हो, भले आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या बिजनेस करते हो, कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, हर जगह तपस्या करनी पड़ेगी आपको। कोई ऐसा स्थान है जहां बिना तपस्या के आपको फल प्राप्त? हिरण्यकश्यपु ने भी 36,000 साल तपस्या की, है कि नहीं, अमर बनने के लिए 36,000 साल तपस्या की। तपस्या तो केवल यहां के लोगों को करना पड़ता है, भगवान के धाम में कोई तपस्या नहीं करता, वहां कोई तपस्या नहीं है, लेकिन यहां पर तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या का अर्थ होता है कि वो सब कार्य करना जो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे एक मरीज है, उसको दवाई खानी पड़ती है ना, और उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाना पड़ेगा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं उपदेशावर्त में, उपदेशावर्त में श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे एक पीलिया का रोगी होता है, उसको अगर मिश्री दी जाती है तो उसको फीका लगता है, लेकिन उसको लेना पड़ेगा, वही उसका इलाज है। वो तो मीठा है लेकिन उसको लग रहा है वो फीका है, लेते लेते जो है फिर वह एहसास करेगा कि ये तो मीठा है, जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो हमारी बीमारी है कि हमें नाम में रुचि नहीं, और इस कारण से हम जप करना नहीं चाहते, हमारा मन जो है वो नहीं मानता। लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि हमें प्राप्त होती है गुरु साधु और शास्त्र से। तो गुरु साधु और शास्त्र से बुद्धि लेते हुए हमें मन को समझाना पड़ता है और हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो कुछ समय के बाद हमारा मन समझ जाएगा। देखिए, हर चीज़ के लिए कोई भी कठिन चीज़ है वो, उसमें अगर हम लोग सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन भी भगवान से ये कह रहे हैं कि मैं तो वायु को काबू में कर सकता हूँ, ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन मन को काबू में नहीं कर सकता, बड़ा ऑब्स्टिनेट है ये। तो मन को काबू में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन वायु को मैं बड़े आसानी से काबू में कर सकता हूँ अपनी धनुर्विद्या से, है ना। तो भगवान क्या करें, बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट इज पॉसिबल, निरंतर अभ्यास से ये संभव है। तो निरंतर अभ्यास क्या है, यही है श्रवण कीर्तन जप हमारा अभ्यास, एक जगह पर बैठ के जप करना, जैसे पातंजलि योग सूत्र में भी दिया गया कि एक जगह अगर बैठ के आप ध्यान लगाते हैं 3 घंटे लगातार तो आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। तो हम भी सुझाव देते हैं कि एक जगह पर स्थान पर बैठकर हम जब महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा मन स्थिर होने लगेगा। और वास्तव में कहीं भी किसी भी स्थान में जाएं, और अगर उस स्थान का हम लोग नापना चाहते हैं, मापदंड देखना चाहते हैं, पल्स चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर वास्तव में भक्ति है या नहीं, या भक्त लोग गंभीर है या नहीं, वो हम समझ सकते हैं, जाके देख सकते हैं जब जप का समय होता है, उस समय पता चल जाएगा। तो जप वो समय है, परीक्षा की घड़ी है, है ना। और कलयुग में जप करना जो है वो सबसे कठिन है कार्य है, क्योंकि हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा है, भयंकर है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हमें भक्तों के साथ रह के जप करना चाहिए। खुद हमें दिक्कत होता अगर जप करने में, तो हमें भक्तों का सहारा लेना चाहिए। जैसे हमने बताया था कहीं पीछे बताया था, मान लीजिए आपसे जब ठीक तरह होता नहीं, जब में आपको नींद आ जाती है या ध्यान भटकता है, तो हमें फिर ऐसे भक्तों के साथ बैठ के जब करना चाहिए जो जब के समय गंभीरता से जब करते। अगर आप उन लोगों के साथ बैठ के जब करेंगे जब के समय बात करते हैं, तो फिर आपका जब भी वैसे ही होगा, वो नाम अपराध करते हैं फिर। तो इसलिए हम उन भक्तों के साथ बैठ के जब करें या उस स्थान में जाके जब करें जहाँ पर गंभीरता से भक्त लोग जब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर आपको भी आदत पड़ जाएगी। वैसे सारा खेल संघ का है, वास्तव में देखा जाए 99% जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो है साधु संघ। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संघ, रूट कॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। साधु संघ यानी कि ऐसे भक्तों का संघ जहाँ पर बड़ी गंभीरता से लोग जप कर रहे हैं, गंभीरता से श्रवण कर रहे हैं, गंभीरता से जो है वो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों का संग करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो प्रारंभ में कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप में पर तपस्या है, आपको बोलेंगे साइकिल चलाना है सड़क पे, तो कितनी बार आप गिरेंगे, बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं। स्कूटर और भी दिक्कत है चलाना। तो इस प्रकार अभ्यास से होता है सब कुछ। अभ्यास करते करते धीरे 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 क्या होता है, फिर स्वाभाविक होता है। कोई हारमोनियम सीखता है तो पहले दिन उसको हारमोनियम देते हैं तो वो कीज की तरफ ही उसका पूरा ध्यान रहता है, वो सारे गामा में लगा रहता है, वो है ना, उसी में उसका नज़र रहता है उसका। और जो अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं वो ऐसे करके बजाते हैं, है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं पहली बार, आपको ड्राइविंग सीखते हैं तो साथ में आपको सिखाने वाला होता है, आप बार बार आपका ध्यान जाता है कहाँ पर, क्लच पे, ब्रेक में जाता है, और बार बार गियर में आपका ध्यान जाता है। वो ड्राइवर जो साथ में ट्रेनर होता है वो डांटता है, सामने देखो नीचे मत देखो, है ना, वो डांट डांट के सिखा दो। हमें जब याद है पहले हम लोग जब बाहर रहते थे तो हम जब सीखने गए तो पहले 6 दिन तो बिल्कुल सीखने वाला है ना, तो फिर उसने 7वें दिन बहुत डांट दिया, और जब डांटा तो फिर पता नहीं क्या हुआ तो हमें भी गुस्सा आ गया, 7वें दिन फिर अपने आप गाड़ी चल रही। तो कहने का अर्थ है कि अभ्यास और साथ में कोई प्रशिक्षण देने वाला, ये उदाहरण हमने इसलिए दिया समझने के लिए कि साथ में एक व्यक्ति होना चाहिए प्रशिक्षण देने के लिए, इसको देते हैं साधु संग, और साथ में अभ्यास। पहले दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, चौथे दिन नहीं आएगा, 5वें दिन नहीं आएगा, 6ठे दिन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगे रहो, छोड़ो नहीं, उत्साह निश्चय धैर्य, इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं एंथुजियाज्म पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। उत्साह के साथ क्या चाहिए, निश्चयात और धैर्य भी चाहिए, है ना, केवल उत्साहित होने से पर्याप्त नहीं। तो इसलिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा और ऐसे भक्तों का सहारा लेना चाहिए। देखिए भक्ति में क्या है, हमें हमेशा निर्भर रहना चाहिए भक्तों के ऊपर। जब हम भक्तों का संग छोड़ देंगे तब खतरा है। भक्तों का संग जब तक रहेगा, भक्तों के संग में जब तक रहेंगे, भक्त हमें सहारा देते हुए हमें लाभ पहुँचाएंगे और हमें रक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन भक्तों के अगर आप दायरे से बाहर निकल जाते हैं तो फिर उसको सुरक्षा नहीं रहती, कोई बचाने वाला नहीं होता है फिर उसे। इसलिए गंभीर भक्तों के साथ बैठ कर जप करना चाहिए और गंभीर भक्तों के साथ बैठ कर सुनना भी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे अभी कई भक्त लोग हैं बड़े गंभीरता से नोट्स बना रहे हैं, कई बार कई भक्त लोग होते हैं वो आते हैं क्लास में लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता है इतना, है ना, वो बिल्कुल बैक बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स मतलब पीछे बैठे होते हैं और वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि टाइम पास करें एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसमें आपने स्कूल्स में भी देख लेवल पे भी देखा होगा, कॉलेजेस में भी देखा होगा, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रंट में बैठकर नोट्स बनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मजाक उड़ाने के लिए बैठे होते हैं, होता है कि नहीं। ये हर जगह होता है, मेटेरियल लाइफ में भी ऐसे ही है, कई बार स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसे होता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो हर जो मतलब प्रैक्टिशनर है वो एक ही लेवल पर नहीं होता है, अलग अलग स्तर के लोग होते हैं। एक ही रूम में जितने भी भक्त बैठे हैं यहाँ पर सब एक लेवल पर नहीं है, अलग अलग लेवल्स पे हैं। तो ये कैसे पता चलता है, गंभीरता से पता चलता है। तो श्रवण भी बड़ी गंभीरता से हमें करना है, वक्ता क्या बोल रहा है, एक एक शब्द उसके हमें क्या सुनाई दिए पूरे क्लास में, ये टेस्ट। कई बार ऐसा होता है लोग क्लास सुन लेते हैं, उनसे पूछा जाए प्रभु जी आज का श्लोक क्या था, जरा बता सकते हैं, वो नहीं बता पाते। आज के परपोर्ट में क्या था, नहीं बता पाते। प्रभु जी क्या बोल रहे थे, नहीं बता पाते। कुछ भी नहीं बता पाते वो, यानी कि फिजिकली थे, शारीरिक रूप से थे लेकिन मानसिक रूप से कहीं और थे, मेंटली एब्सेंट थे। तो ऐसी साधना का लाभ नहीं मिलता है। हमें यह भी सीखना चाहिए कि साधना कैसे की जाए, है ना, भागवत श्रवण कैसे करना चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं लेकिन कैसे ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, और श्रवण करते हैं तो कैसे जप श्रवण करना चाहिए। जैसे कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, अब नोट्स बनाने के बाद अगर उस नोटबुक को शाश्वत काल के लिए अलमारी में बंद कर दें तभी लाभ नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि भागवत में दिया है, भागवत में क्या दिया है, सुनने के बाद विचार करना जरूरी है, उसके ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है, यानी कि उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। भले हम 10 मिनट के लिए बैठने साथ में कि आज के श्लोक में क्या डिस्कशन हुआ था, लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग लेक्चर सुनते हैं और जैसे ही हम लोग कमरे से बाहर आते हैं हम भूल जाते हैं। तो वो एक सेकेंड लेवल क्या है इसमें, कि हमें मनन करना चाहिए और या उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में और ज़्यादा वो इंप्रेशन उसका स्ट्रांग पड़ेगा, और फिर डाउट अगर हो रहा है तो दोबारा प्रश्न उठा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगले दिन क्या श्लोक आने वाला है क्लास में, उसकी चर्चा या उसका अध्ययन एक दिन पहले भी कर लें तो उसका भी लाभ मिलेगा। जैसे ये आर्ट ऑफ चैंटिंग बुक है, आप में से कितने लोगों के पास ये बुक है, बाहर काफ़ी लोगों के पास। तो जो रेगुलर आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले ये चैप्टर को पढ़ना चाहिए खुद, ठीक है ना, आने से पहले, और नोट्स बनाने चाहिए। फिर उसके बाद उसमें कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ कमेंट्स हैं वो भी नोट करने चाहिए। तो जब आप आएंगे प्रिपेयर्ड आएंगे तो क्लास में आप आएंगे तो इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि फॉर्मेलिटी है, प्रभु जी कहीं बुरा ना मान जाए, है ना, तो चलो चले जाते हैं हम लोग सुनने के लिए। तो उससे क्या होगा कि वो फॉर्मेलिटी के लिए जब करेंगे तो हमें कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या है, पहले से तैयारी करना चाहिए, उससे भी इंटरेस्ट पड़ता है क्लास सुनने का, क्योंकि अज्ञानता का सुख नहीं होना चाहिए, सुख हमें होना चाहिए ज्ञान का। वो पहले से हमें ज्ञान होगा, श्लोक के बारे में जानकारी होगी, तो जब आप बैठेंगे तो तब आप देख सकते हैं कि जो मैंने सोचा मैंने समझा अब जो वक्ता बोल रहा है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस हैं। तो उसमें क्या है कि फिर थोड़ा डिस्कशन का भी स्कोप रहता है क्लास, फिर लोग प्रश्न भी पूछेंगे। अभी क्या होता है कि क्लास के बाद क्वेश्चंस नहीं उठते, क्यों नहीं उठते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं हम, है ना। कोई वास्तव में अगर साधना कर रहा है, कोई वास्तव में अगर भजन कर रहा है, कोई वास्तव में अगर सेवा कर रहा है, कोई वास्तव में अगर गुरु की सेवा कर रहा है, तो उसके मन में प्रश्न उठते रहने चाहिए, ये एक एडवांसमेंट का लक्षण है। और जब हमारे कोई क्वेश्चन उठते ही नहीं है, प्रश्न उठना बंद हो जाते हैं, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ हमें समझ में आ गया। हमारे वहाँ एक बार बता रहे थे, या तो वो परमानेंट हो चुके हैं या उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इंक्विजिटिव होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए जब तक इंक्विजिटिवनेस रहेगा तो इसका मतलब क्या स्पिरिचुअली साउंड है। जहां इंक्विजिटिवनेस बंद हो जाता है और फॉर्मेलिटी के लिए केवल औपचारिकता के लिए हम लोग भाग लेते हैं तो फिर ऐसी साधना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर हम 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल भी साधना में आते रहें, सुबह के कार्यक्रम में आते रहें, वो सूखा हो जाएगा। देखिए ये तो ये इतना सीधी सी बात है कि जितना आप दूध को गाढ़ा बनाते जाएंगे उतना लाभ मिलेगा, जितना दूध को आप गर्म करेंगे दूध का पूरा लाभ मिलता है कि नहीं। दूध को हिलाते जाइए, गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, उसको उबालते जाइए, उतना वो दूध वह स्वाभाविक रूप से मीठा हो जाता है बिना चीनी डाले। और जितना आप दूध से आप फिर आप दही बनाते हैं, दही से फिर आप क्या बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, है ना, मक्खन से फिर घी निकालते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि हमारे ऊपर है कि हम जो साधना कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं उसका हम लोग कितना लाभ उठा रहे हैं, उसमें हम कितनी तरह पूरी तरह से मग्न हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डीपली एब्जॉर्ब होना है श्रवण कीर्तन में, मेडिटेशन इसको कहते हैं, मेडिटेशन इसको कहते हैं। तो इसलिए ध्यान का मतलब यही है कि जो लंबे समय तक चले। तो इसका मतलब यह है कि हमें एब्जॉर्प्शन की बड़ी आवश्यकता है। तो हम जैसे प्रश्न जैसे इन्होंने पूछा तो उसका उत्तर यही है कि हमें ऐसे भक्तों का सहारा लेना चाहिए और इसको तपस्या समझते हुए निरंतर अभ्यास से हम लोग जो है इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं हरि नाम से। इनका प्रश्न ये है कि अपराध पहले से बहुत सारे अनर्थ हैं, अब हम अपराध कर रहे हैं और अनर्थ पैदा कर रहे हैं हम, तो ये तो और समस्या बढ़ती जाती है हमारी। तो इसका यही है कि हरि नाम ही साधन है, हरि नाम ही साध्य है, और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरे नाम है व केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, इसका ये उत्तर है। हाँ नहीं रिलेटेड पूछिए, वो अभी हमने समझाया है कि इन्होंने कहा कि इनअटेंटिव चैंटिंग का सोल्यूशन क्या है, उसको ठीक करने का है ना, ये प्रश्न है आपका। अगर हम लोग ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पा रहे तो उसका सोल्यूशन, यही प्रश्न का भी यही प्रश्न था और आपके प्रश्न का भी यही उत्तर है कि हमें बता रहे हैं कि भक्तों का हमें सहारा लेना पड़ेगा, बिना साधु संघ के ये ठीक नहीं होगा। जब तक आप देखिए मरीज होता है, पेशेंट है, वो पहले सबसे पहले तो ये मान ले कि वो पेशेंट है कि नहीं, पहले तो उसको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पेशेंट है। और वो मान लेता है कि पेशेंट है, दूसरा स्टेप ये है कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर डॉक्टर जो सजेस्ट करेगा प्रिस्क्रिप्शन उसको फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर कितना भी बेस्ट डॉक्टर हो, एक्सपर्ट डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, लेकिन आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं फॉलो करेंगे तो डॉक्टर का दोष नहीं है। इसी तरह से गुरु वैष्णव वो अगर माँ भागवत भी हैं, बहुत एडवांस रियलाइज डिवोटी भी हैं, बट अगर हम लोग जो हैं फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शंस तो उसमें उनका क्या दोष है। सूरज तो प्रकाश सबको दे रहा है, लेकिन अगर हम लोग कमरे में रहेंगे बंद करके, कर्टन डाल के और ब्लैक ग्लासेस डाल के, दरवाजा सारा बंद करके, फिर बोलेंगे सूरज की रोशनी नहीं आ रही। जैसे हम लोग गए थे कल कटवारिया सराय में, बिल्डिंग उन्होंने बनाए इतने पास पास कि यहाँ से लेकर जैसे आप वहाँ बैठे हैं जहाँ वृंदावन सिंह प्रभु बैठे हैं, केवल इतना ही फासला है बिल्डिंग के बीच में। एक बिल्डिंग यहाँ पे है, उसके सामने बिल्डिंग एक और है, मतलब उसकी बालकनी जो है लगभग टकरा रही है एक दूसरे से, मतलब आप उस बालकनी से इस बिल्डिंग की बालकनी में आ सकते हैं आराम से छलांग मार के, मतलब इतने पास पास घर है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी आती नहीं है ना, वहाँ पर सनशाइन आता ही नहीं है। छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे वहाँ पर घरों में लोग रह रहे हैं, अंधकार में रह रहे हैं, सनलाइट नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं है। तो वहाँ पे आपने को सिचुएशन खुद बनाया कि सनलाइट नहीं आए, किस लिए, सिर्फ इसके लिए कि एक के ऊपर फ्लोर बनाते जा रहे हैं, जितने फ्लोर्स बनाएंगे उतने यहाँ टेनेंट्स रहेंगे, उतना हमें पैसा मिलेगा। तो पैसे के चक्कर में जो है सनलाइट वो भूल गए, तो बीमारियाँ तो लगेंगी है ना। तो इसी तरह से क्या है कि हम लोगों को ये देखना है कि सबसे पहले एसोसिएशन में रहना है और भक्तों के सहारा लेना पड़ेगा और भक्तों के पास जाकर उनके साथ बैठ कर जप करना पड़ेगा, यही सोल्यूशन है इसका। और फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा, फिर अगर आप कुछ कारणों से भक्तों के साथ नहीं भी जप कर पाए तब भी, लेकिन आप सावधानीपूर्वक जप करें। हमें ये समझना है कि ये अगर हमें धाम जाना है तो हमें ये तपस्या तो करनी पड़ेगी कम से कम, कोई भी सिचुएशन हो। ये नहीं कि हम केवल यहाँ दिल्ली में हैं या घर में हैं या मंदिर में हैं तब हम लोग अच्छी साधना करेंगे। कई बार क्या होता है, कई बार लोग मंदिर में अच्छा जप करते हैं या अपने जब घर पे होते हैं तो अच्छा जप करते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के समय वो भूल जाता है साधना। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, बोलते हैं वो तो वहाँ के लिए था साधना, ट्रेन के लिए नहीं है, तो यहाँ तो हम आराम से उठ सकते हैं 7 बजे 8 बजे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो साधना कर रहे हैं वो सब सुपरफिशियल था। तो ट्रेन में भी है वहाँ पे भी आप साधना आपको करना पड़ेगा उसी तरह से, आप फ्लाइट में भी हैं तो वहाँ पे भी वैसी साधना करनी पड़ेगी आप। तो अगर ऐसी साधना जब हर जगह करेंगे तब जाके अंतकाल में आप कहीं भी होंगे, कहीं भी आप रह के शरीर छोड़ रहे होंगे तो वो साधना आपको साध्य तक ले जाएगा। आपको कहाँ पता कि आप कहाँ शरीर छोड़ने वाले हैं? इसलिए हर परिस्थिति में ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये नहीं केवल यही साधना अच्छी होनी चाहिए, जहाँ भी हम वहाँ साधना करना है। जैसे कई बार हम रथ यात्रा में जाते हैं ना, तो वहाँ टेम्पल्स नहीं है, समझ लीजिए अननोन प्लेस है, तो वहाँ पे भी हमें साधना करनी पड़ेगी। आपके वेस्ट में जाते हैं आपके जॉब के लिए कारण या प्रोफेशनल रीजन के कारण, तो वेस्ट में चले गए आप, तो वेस्ट में जाते ही आप बोलेंगे अब तो इंडिया में नहीं है हम, आप साधना की आवश्यकता नहीं, तो बस पैसे वैसे ही आप वेस्ट में हैं और दूसरा साधना नहीं है तो बस हो गया, हरी बोल हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमें टॉप प्रायोरिटी देना है, कहने का मतलब है इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते हम। मंत्र, हाँ, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया जाता है मंत्र, इसलिए हम मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, संप्रदाय बिना मंत्रा निष्फलाते मंत्र मतः, पद्म पुराण में दिया है कि अगर आप मंत्र संप्रदाय से नहीं लेते तो आपको उसका वास्तविक फल नहीं मिलेगा, वो गुरु से ही आपको मंत्र लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमने जैसे बताया कि हरिनाम भी हम गुरु से लेते हैं तो उसका प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ता है, हरिनाम का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है ना। तो जब हम लोग मंत्र गुरु से प्राप्त करते हैं और गुरु वो मंत्र देते हैं तो उस मंत्र में हमारे इष्ट छुपे हैं, हमारा संबंध क्या है, शाश्वत संबंध क्या है हमारे इष्ट से, इष्ट मतलब कृष्ण से, हमारा एटर्नल रिलेशनशिप क्या है वो मंत्र में है, छुपा हुआ है। हमारा रिलेशनशिप गुरु के साथ क्या है, एटर्नल रिलेशनशिप क्या है, उस मंत्र में छुपा हुआ है ना। इसलिए उस मंत्र का आदर देना सबसे महत्वपूर्ण है, और ये मंत्र भी तभी फलीभूत होगा जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं तो ये आप कितने भी सावधानी पूर्वक जप कर लीजिए लेकिन अगर गुरु की इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा नहीं करेंगे तो फिर भी ये मंत्र इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो मंत्र फर्टिफाई करेगा ये बीज, जैसे बोलते हैं ना बीज अंकुरित तभी होगा जब हम लोग गुरु के मार्गदर्शन पर चलेंगे, तभी ये आपको असली रिजल्ट देगा। तो सेवा की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए जब हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी हमें सेवा में लगाइए, कृष्ण की सेवा में लगाइए, है ना। तो हम सेवा की याचना करते हैं और जब सेवा आती है हम भाग जाते हैं, तो फिर कैसे हरिनाम का लाभ मिलेगा हमें? तो हरिनाम का लाभ तभी मिलेगा जब उसको सेवा की भावना से लिया जाए। इसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि श्रवण भी हम करते हैं हरिकथा का सेवा की भावना से, सर्विस विद सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स वन मस्ट हियर हरिकथा, सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, सेवा की भावना से। तो इसलिए हमें ये बात का ध्यान रखना है, ये सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए हरिनाम से। जैसे मान लीजिए कि आप जब कर रहे हैं और कोई वरिष्ठ वैष्णव आपको सेवा के लिए बुलाते हैं तो मैं समय सेवा के लिए जाना चाहिए, गुरु आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं तो सेवा के लिए जाना चाहिए, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं अटेंटिव चैंटिंग कर रहा हूँ। आप सो रहे इस बात को भी समझना है। तो कई बार जब करेंगे कोई वरिष्ठ वैष्णव बुलाते हैं या आपके अधिकारी बुलाते हैं या गुरु बुला रहे हैं आपको सेवा दे रहे हैं कुछ, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं ध्यानपूर्वक जब कर रहा हूँ, वो फिर अपराध हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है उसमें बस ये नींद ना आए, बस सुबह अगर आप नहीं कर पा रहे तो जब भी करते हैं उसमें ध्यानपूर्वक जब करें। ये जो सारे बातें बताया हमने उसका ध्यान रखें, प्रयास करना पड़ेगा सुबह का, क्योंकि वास्तव में जो असली लाभ मिलता है चैंटिंग का वो सुबह मिलता है, क्योंकि हमारे ऊपर देखिए ना गुणों का प्रभाव चल रहा है। अभी हम लिबरेटेड प्लेटफॉर्म में तो है नहीं, मुक्त अवस्था में नहीं है, तो सत्व गुण की जब प्रधानता होती है सुबह के समय, तो उस समय जब करना आसान होता है, मान लिया हमारा कॉन्शियसनेस मोड ऑफ गुडनेस में होता है, तो उस समय चैंटिंग करना आसान हो जाता है। रात के 10 बजे तमोगुण शुरू हो जाता है, उसका पूरा प्रभाव होता है, उस समय अगर हरिनाम लेंगे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कोई 12:30 बजे रात को अगर जप करता है, ये राक्षसों का भूत पिशाच का समय होता है, तो ऐसे समय भजन नहीं करना चाहिए अनलेस एंटिल आप लिबरेटेड प्लेटफॉर्म में। तो इस कहने का मतलब है कि क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जो है हमारे कॉन्शियसनेस पड़ता है, कंटेमिनेट करता है हमारे कॉन्शियसनेस, तो उस बात का ध्यान रखना। और लक्षण से पता चल जाएगा, ये नाम अपराध, हम 10 नाम अपराध ध्यान से पढ़ें रोज, इसलिए रोज हमें पढ़ना चाहिए 10 नाम अपराध, और नामाभास की क्वालिटीज़ क्या हैं वो पता होना चाहिए, उससे पता चल जाएगा। अगर नाम अपराध नहीं हो रहा है तो नामाभास की स्थिति में, सिंपल। अगर आप समझ लीजिए ट्रैफिक लॉज आप फॉलो कर रहे हैं, कोई रूल नहीं ब्रेक कर रहे हैं सड़क का, तो आप अच्छे सिटीजन हैं आप। अगर आप रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो आप एक क्रिमिनल हैं, आपको पकड़ा जाएगा, सिंपल है। तो जो ऑफेंसेस हैं उसको आप डेली पढ़िए और देखिए ऑफेंसेस तो नहीं कर रहा मैं कहीं, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो आप नामवास की स्थिति में। हाँ, शुद्ध नाम की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे आध्यात्मिक जगत से जो हरिनाम आ रहा है और वो इस हरिनाम को सुन सकता है, जिसने भगवत प्रेम जागृत कर लिया है वो उस हरिनाम को सुन सकता है जो आध्यात्मिक जगत से आ रहा है, ये बोल रहे हैं ना, ये प्रश्न है आपका। तो ये शुद्ध नाम की बात कर रहे हैं कि शुद्ध नाम जो है जब कृष्ण प्रेम जाग जाता है, यानी कि दूसरी तरह से कहा जाए तो जो शुद्ध नाम का जो उच्चारण कर रहा है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। इसका कहने का अर्थ ये है, यानी कि जब तक शुद्ध सत्व नहीं प्रवेश करेगा, आप ट्रांसेंडेंटल स्टेज पर नहीं होंगे, तो जो शुद्ध नाम, नाम का जो वास्तव में जो असली उसकी महिमा है उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे कोई अगर एडवांस स्टेज में पहुंचता है, आसक्ति के लेवल पहुंचता है, रुचि से भी आगे, तो वहां पर फिर वो रियलाइज करता है कि नाम और फॉर्म में, नेम और फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। नाम लेते ही उसको फॉर्म नजर आता है कृष्ण, आसक्ति की स्टेज, नाम और नामी में कोई भेद नहीं रह जाता है ना, भिन्नत्वाम नाम अनामी हम जैसे बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे हमारे रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो फिर ये शुद्ध नाम हमारे वाणी में, हृदय में आके बैठेगा। शुद्ध नाम अवतरित होता है, डिसेंड करेगा हार्ट में। शुद्ध नाम अपने प्रयास से नहीं ला सकते, शुद्ध नाम जो है वो डिसेंड करेगा शुद्ध भक्तों की कृपा से, हमारे प्रयास को देखते हुए, हमारी तपस्या को देखते हुए, हमारे समर्पण को देखते हुए, है ना। तो ये सब देखते हुए शुद्ध नाम कृपा प्रकट दिखाएगा और शुद्ध नाम प्रकट होगा। शुद्ध नाम प्रकट होने का मतलब है कि साक्षात कृष्ण जो है अब आपके हृदय में विराजमान है, ये है अर्थ उसका, तो फिर उसका पूरा लाभ मिलता है। चलिए, भगवान और देवताओं में अंतर है, इसको कैसे समझाया जाए सरल भाषा में, इतना ही पूछ रहे हैं आप। सिंपल है, जैसे देश का प्रधानमंत्री एक ही होता है, दो नहीं होते, देश का राष्ट्रपति एक ही होता है। किसी देश में देखा कि आपने 10 प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कोई देश है? किसी कॉलेज में प्रिंसिपल एक होता है, तुम्हारे 10 प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज में। तो इसी तरह से भगवान भी एक है और बाकी जो लोग सेवा कर रहे हैं उनकी, वो सब देवता है, जो सृष्टि के संचालन में उनकी सहायता है वो सब डेमीगॉड्स, सिंपल है। सिर्फ जड़ में पानी डालिए तो शाखाएं अपने आप तृप्त हो जाएंगी। भगवान को प्रसन्न करिए, देवता लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सर्वे भक्तवृंद की जय, प्रेमानंद।